Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But friends, please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers 233-1444-2342-1050 and 233-1-0464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalema Aneja Dank, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आज सोमवार है और आज के दिन हमेशा की तरह कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा दुनिया भर की खबरों को लेकर हमेशा की तरह हाजिर हैं. और आज सोमवार है तो आप हमारे कार्यक्रम में हुआ करते हैं सम्मिलित, हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 या फिर 2331-0464. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं. हमारे साथ कार्यक्रम में खबरों पर चर्चा के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं स्टूडियो में आज वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
आप दोनों को नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार, धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
Thank you, Manoj. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, Prime Minister Narendra Modi launches multiple projects in Haryana to mark Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar's birth anniversary. Highlights Dr. Ambedkar's ideals as foundation of governance. Domestic stock markets remain closed on account of Ambedkar Jayanti. Major Asian indices register gains. European markets trade in positive territory. And crude oil prices rise over 1%. Brent crude trades at $65.57 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अनेक परियोजनाओं को लॉन्च किया. कहा कि बाबा साहब के आदर्श प्रशासन की हैं बुनियाद. अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में घरेलू बाजार रहे बंद. एशिया के प्रमुख बाजारों में देखी गई तेजी. यूरोपीय बाजारों में भी समाचार तैयार किए जाने तक लाभ के साथ चल रहा था कारोबार. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 1% बढ़ी. ब्रेंट क्रूड के दाम $65.57 प्रति बैरल के आसपास पहुंचे.
Prime Minister Narendra Modi said, as the nation pays tribute to Baba Saheb, his ideals continue to guide the very soul of the government. Addressing a public meeting in Hisar in Haryana today, Mr. Modi said, for the past 11 years, Baba Saheb's life, his struggle and his timeless message have been the cornerstone of the government's journey. Mr. Modi said, each day, every decision taken and every policy framed is a humble step in the direction shown by Dr. Ambedkar, which is a path of justice, inclusion and dignity for all. Earlier, Prime Minister flagged off commercial flight from Hisar to Ayodhya and laid the foundation stone of the Terminal 2 building at the Hisar airport today. The new terminal project, valued at over 410 crore rupees, will feature a modern passenger terminal, a dedicated cargo facility and an air traffic control building. Prime Minister said before 2014, India had just 74 airports and this number has now crossed 150. He also highlighted the success of Center's Udaan scheme, which has enabled thousands of Indians to fly for the first time. Prime Minister Modi also inaugurated and laid the foundation stones of development projects, including 800 megawatt power unit of Deen Bandhu Choto Ram Thermal Power Plant, compressed biogas plant in Mukarrabpur, and over 14 kilometer Rewari bypass project under Bharat Mala project at the cost of over 1,000 crore rupees. Well, more to discuss on this a little later. For now, we are now joined by Sunil calling us from Delhi. जी सुनील जी अपना सवाल पूछिए जी.
नमस्कार मार्केट बंद्रा टीम.
नमस्कार.
एक्चुअल में हमने ना हमने 10 नंबर के अगेंस्ट एक चेक इशू किया था 4 लाख रुपए का. वो गलती से हमारे जो असिस्टेंट था उसने जो ना चलान जनरेट कर दिया 40 लाख रुपए का, 40 लाख समथिंग का, और चेक का अमाउंट था 4 लाख का. वो बैंक ने हमारा 40 लाख रुपए काट दिया. तो हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से अप्रोच किया. बैंक कहता है कि आप अपने सीए सीए को बोलो, वो आप रिफंड डालेगा. हम जब सीए के पास गए, सीए कहता है कि जी आपका रिफंड तो आ जाएगा, लेकिन जो है आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है, क्योंकि आपके कुछ जो एम्प्लाई है उनका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है, उस पर आपने हायर रेट टैक्स काटना था 20% पिछले साल में. वो आपने काटा नहीं, वो आएगा तो कट के आएगा. सर हम बैंक के पास जा रहे हैं, हमने 4 लाख का चेक इशू किया, उन्होंने 40 काट दिया. बैंक वाले बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार हुए और उन्होंने हमारे को 1 महीने का टाइम दिया है. सर अगर 1 महीने के अंदर वो पैसा नहीं देते तो हम क्या करें? और दूसरा सर, क्या ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉई के आधार और पैन कार्ड को लिंक कराए? सर प्लीज बताइए सर.
सुनील जी, दो मुद्दे हैं. जो आपने चेक काटा था उसमें दो तरीका देखा जाता है. बैंक देखता है कि जो आपने वर्ड और जो फिगर्स उसमें से एक को ही वो बेस बनाते हैं, और नॉर्मली जो आपका वर्ड्स होता है वो उसको मेंशन करते हैं. तो आपने 4 लाख रुपए का चेक काटा था, 40 लाख रुपए डिडक्ट हुआ है, रिफंड का मामला बनता है. सीधे सीधे अगर आप देखें तो ये रिफंड का ही बनेगा, तो इसलिए आपको रिफंड के लिए ही कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से जो अब पैसा चला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बैंक में वापस वो क्रेडिट नहीं हो पाएगा. दूसरा जो मुद्दा है कि आपके इम्प्लॉयज का जो पैन और आधार लिंक नहीं है, चूंकि आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उनका, और वहां पर टीडीएस डिडक्शन की जो जवाबदेही है वो आपकी है, तो ऐसे में आप को ही ये देखना है कि उनका लिंक है कि नहीं है. अगर वो लिंक नहीं है तो डबल की जिम्मेदारी बनती है. आपने नहीं काटा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है वो आपके ऊपर करेगा, लेकिन जब आप रिफंड क्लेम करेंगे वहां पर शायद आपको इस मामले में थोड़ी रियायत मिले. लेकिन दोनों ही मामले में आपके लिए कोई अभी मेरे पास कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने को नहीं है.
दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेश शर्मा. योगेश जी स्वागत आपका. सवाल अशरफ जी, दिल्ली से अशरफ जी हमारे पास.
जी
अशरफ जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
जी हेलो सर. जी सर. जी सर.
जी आप जुड़ गए हैं.
नमस्कार सर. मैं ये कह रहा हूँ कि ये एमएसएमई जो है ये किस तरह से उद्योगपतियों की मदद करता है?
देखिए एमएसएमई जिसको हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसको अगर हिंदी में मैं कहूं तो सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग हैं. ये उद्योग एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. लगभग 48 से लेकर के 50% के बीच उनका जो है वो कुल योगदान है. दूसरा क्या है कि कोई भी एक बड़ी कंपनी सब कुछ खुद तैयार नहीं कर पाती है. कच्चा सामान उनके लिए जो जिसको हम लोग इनपुट्स कहते हैं उसके लिए उनको अलग अलग छोटे छोटे उद्यमियों पर निर्भर रहना पड़ता है. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो एमएसएमई की भूमिका आप इसी से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 48% है, निर्यात में भी उनकी काफी बड़ी हिस्सेदारी है, और अभी आपने बजट में जब फरवरी में बजट आया था तो उनकी परिभाषा में भी बदलाव किया गया है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रतिस्पर्धी बना सके.
एंड आपने जो परिभाषा की बात की तो अब ज्यादा number of MSEs have come into that bracket because of the increased bracket.
नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो आपके लिए जो कारोबार और आपके निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है, तो आप ज्यादा कर्ज ले सकते हैं. तो आपकी जो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत थी उसमें आपको काफी मदद मिलेगी. एक दूसरा, दुनिया के बाकी देशों में जो एमएसएमईज हैं, खासतौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण जर्मनी माना जाता है, तो जर्मनी में जिस तरीके के उद्यमी हैं उनके साथ अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी हो तो आपका आकार अगर बड़ा होता है तो आपके लिए काफी मदद मिलेगी.
दैट्स अ रेवलेशन. मूविंग ऑन, वी आर नाउ जॉइंड बाय योगेश शर्मा कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. जी योगेश जी अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार सभी को.
नमस्कार.
हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मार्केट में अभी ऑलरेडी एक बॉटम बन चुका है, या फिर अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा वॉलेटिलिटी का आशंका है। और इसका दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड को उसमें कहते हैं कि उल्टा होता है, मार्केट जल्दी सपोर्ट करता है, पर इस बार हमने देखा कि मार्केट भी क्रैश हुआ, गोल्ड भी क्रैश हुआ, एक साथ हुआ, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
योगेश जी, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं। सोने में लगभग 7% की बढ़ोतरी बीते कुछ समय में देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी एक संतोषजनक कही जा सकती है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ही विपरीत दिशा वाली कहानी हमें बहुत देखने को नहीं मिल रही है। पहला सवाल जो आपका शेयर बाजार को लेकर है, देखिये अप्रैल 2 से लेकर के अप्रैल 9 के बीच में कहते हैं ना काफी पानी बह चुका है, और जिस तरीके से पहले लगा जो रेसिप्रोक कल टैरिफ था, फिर उसके बाद चीन के ऊपर बढ़ाया गया, फिर उसको 90 दिन के लिए रोक दिया गया, फिर ये कहा गया कि जो आईटी मोबाइल फोन सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू नहीं होगा। अब ताजा उसमें ये है, जैसा कि कल जो कहा गया कि उसके लिए अलग से नई दरें आएंगी, तो बहुत अभी के समय में ना कुछ कहना मुश्किल हो रहा है कि हम जो अभी शेयर बाजार का मौजूदा स्तर है उसको मान लें कि इससे नीचे नहीं जा सकता, जिसको हम लोग बाजार में तकनीकी भाषा में कहते हैं कि क्या वहां पे उसको सपोर्ट मिल रहा है क्या। वो सपोर्ट लेवल ढूंढना इस समय किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए भी या बाजार के विशेषज्ञ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज नई नई नीतियों में या जो मौजूदा नीति उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव अभी आप देख सकते हैं अगले कम से कम 10 से 15 दिन तक। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि 90 दिनों में 90 व्यापारिक समझौते करने का लक्ष्य रखा है, किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ होता है और खासतौर पर जाहिर सी बात है कि भारत के साथ क्या होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होगा हमारे शेयर बाजारों के लिए।
बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्र, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। हेलो लालिमा जी, हेलो मनोज जी,
गुड इवनिंग जी, यू आर वेरी रेगुलर कॉलर। यस जी, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
द टू क्वेश्चन मिस्टर सिन्हा, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली इवन इन द अप्रैल 8 ट्रेडिंग सेशंस एफपीआई विथड्रॉयल इज अबाउट 31,575 crore, but on the contrary 5 of the top 10 valued firms had 84,559 crores in the just last week. So out of this 10 top companies which I'm talking about, I am holding at least 5 of those. How these would fare in the coming at least the first quarter 2025-26, how this would fare in spite of this tariff war? My second question is, see, when this tariff war started, many of the companies, stock market in US also fell down. What I did was quickly I invested some amount and I bought some 2-3 stocks of the American companies. Now, after the Trump announced 90 days of the pause, immediately all those went up to some 20-25%. Now I am having up almost 20-25% of the profit. If I sell in this tariff war, whether the brokerage also will go up, because my broker bank is also in US and it is an American bank. Thank you. These are my two questions.
Right.
Talking about the first question, that what will happen during the first quarter, as I was just mentioning that we are seeing a lot of ups and downs in the policy stance by US, and we are also seeing some kind of retaliatory move by China. Fortunately, other countries are not showing the kind of retaliation which were expected. So that is something very positive. And in fact, the countries are, especially smaller countries like, which is a commercial hub, you can say in Asia, is Singapore. They are very much concerned about the overall tariff war situation. So as of now, what we expect that the next 40 to 45 days are very critical, considering what is going to happen on the trade agreement between US and the other countries. And of course, the China stance is very clear. US is not going to give any kind of comfort or relief to China, and China will also take some kind of retaliatory measure. So that is something which will affect the stock market, and it's very difficult to say that whether we have bottomed out or there will be some kind of upward movement. It will be a purely incident based and day to day based incident which will decide the direction of the market. Coming to your second question about the stocks which you have bought, of course it all depends upon what kind of exchange value is there. So that will impact the brokerage, whether it is, if the rupee is down, then of course it will have another impact. When the rupee is up, there will be another impact. The good thing is that rupee has gained some strength during last 4 to 5 days by almost good percentage, I would say. I'm not recalling the exact percentage, but it's a good percentage. So that is something which is going to help. But of course, the exchange, it will decide what kind of brokers you will have to pay.
खैर जो कुछ भी यानी निकले उसमें मार्केट मंत्रा टीम के लिए बधाई, यानी की ओर से आपको बधाई तो प्रसाद साहब बनती ही है, और लड्डू हमारे लिए भी जरूर रखिएगा क्योंकि अच्छा मुनाफा आपको हुआ। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घरेलू शेयर बाजार आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहे। शुक्रवार को यानी पिछले शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1310 अंक यानी 1.77% बढ़कर 75,157 पर बंद हुआ था। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 429 अंक यानी 1.92% उछाल के साथ 22,829 दर्ज हुआ था। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था। और अब चले एशियाई बाजार की ओर यानी वैश्विक बाजार की ओर, पहले एशिया उसके बाद यूरोप, जहां दोनों स्थानों पर तेजी के रुझान आज दिखे हैं। हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक का आज 2.4% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 में 1.1% से अधिक की तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की वृद्धि हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.76% उछाल के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी बढ़त के साथ कारोबार होता दिख रहा था। समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स लगभग 2.4% लाभ में था। फ्रांस के कैक 40 में 2.1% की तेजी थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 1.7% से अधिक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। श्रोताओं, एक बार हम आपको अपने कुछ आप जुड़ चुके हैं, लेकिन तो भी जो नए श्रोता या बाद में जुड़ने वाले श्रोता हैं उनके लिए अपने कॉलिंग नंबर बताना चाहेंगे।
Yes, certainly. Well, the numbers on which you can call are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Friends who are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers, right? All right, we move on to
Mumbai.
Yes, that's right. Gautam is joining us from Mumbai. Ji, Gautam, sawal puchhe, ji.
Yeah, good evening, Master Mukherjee.
Good evening, yes.
My question is related to the what you call housing society. Now in Maharashtra, the housing board has declared that all the deposit has to be kept in the what you call cooperative housing society. Now, the recent past only, the one incident has happened with the Indian Cooperative Bank. Now, where the society money has been stuck up. Now, in this case, why not the RBI can intervene and try to give a relief to the housing society so that housing society, they can withdraw the amount, or they have to give some relief to, the, suppose if they keep the, what you call, the deposits and other items in a research bank to avoid this kind of the results. Your take on this, sir.
Certainly, it all depends upon RBI what kind of relaxation they give. In many of the cases, they have given withdrawal up to certain amount, say up to 5 lakh rupees or up to 2 lakh rupees. It all depends upon RBI. So here, I have very limited role to play except to say that please give representation to RBI.
Mumbai se lautne Ghaziabad, humare saath phone line par hain Gaurav. Gaurav ji, swagat aapka, sawal puchhe.
नमस्ते सर।
नमस्ते।
सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेड डिफिसिट का सलूशन टैरिफ बढ़ा के क्या हो सकता है? ट्रेड डिफिसिट में तो वो अगर कंडीशन अमेरिका और चाइना के बीच में से ट्रेड डिफिसिट ज्यादा है तो वो चाहेगा कि चाइना अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदे, और अमेरिका बनाता है डिफेंस इक्विपमेंट है, तो इसलिए उनको ये बोलना चाहिए टैरिफ बढ़ाने से तो कोई नुकसान ही है, दोनों का फायदा तो कुछ होना नहीं है, तो ये क्या ये सही रास्ता है जो ट्रंप साहब अपना रहे हैं, या और कोई रास्ता नहीं इसके लिए? ट्रेड डिफिसिट कैसे काम किया सकते हैं बिटवीन द कंट्रीज?
देखिए, एक पुरानी कहावत है कि आप कर बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। होता यह है कि आप अगर नीचे रखते हैं तो वॉल्यूम गेम होता है। चीन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि चीन का इकोनॉमी ऑफ स्केल काफी हाई है, यानी कि वो बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन कर पाते हैं। दूसरी तरफ उनके पास जिसको कहते हैं ना कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी वो किसी वक्त कर लेते हैं। दुनिया के बाकी देश अवमूल्यन के मामले में जितने कंजर्वेटिव हैं, चीन उतना नहीं है। चीन बहुत आक्रामक है इस मामले में। अब अपने व्यापार घाटे को अगर कम करना है तो आप अगर सोचते हैं कि हम अगर व्यापार शुल्क बढ़ा देंगे तो हमारा व्यापार घाटा कम हो जाएगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसका उल्टा भी असर हो सकता है। और आप अगर गौर करें कि 2 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को अचानक जब ट्रंप साहब 90 दिन के लिए जो है वो ऐलान करते हैं कि ये नहीं होगा, इसके पीछे एक वजह ये थी कि ये साफ समझ में आने लगा कि इसका हमको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना वास्तविक सिद्धांतों पर चलता है। भावनाओं से अगर अर्थशास्त्र चलने लगे तो अर्थशास्त्र में फिर रुपये नहीं चलेंगे, फिर आपके लिए कुछ और सिस्टम चलना पड़ेगा। तो आपके बात का कुल मिलाकर मैं निचोड़ इतना ही कह सकता हूं कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए व्यापार शुल्क बढ़ाया जाना समाधान नहीं है।
All right, we could just actually go on talking a lot about the US flip-flop, but let's move on to Aman, who's calling us all the way from Maharashtra. Oh, sorry.
Ghaziabad. Ghaziabad.
Ramesh, yes, Ghaziabad se Ramesh hamare saath hain. Ji, Ramesh ji, sawal poochiye.
Haan ji, namaskar.
Namaskar. Ji, 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 ji.
Sir, TDS na kate, ye hume tax ka form jo bhanna padta hai. बैंक में जैसे एफडी जमा है उसमें टीडीएस ना कटे, तो कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक हमें भरना पड़ेगा? लास्ट ईयर हमने G15 भरा था लास्ट ईयर, तो सीनियर सिटीजन होने पर हमें बताया था इसका फॉर्म का चेंज हो जाएगा, तो हमें इसी अप्रैल में ही भरना पड़ेगा कि हमें मई में भी भर सकते हैं?
रमेश जी, अगर आप फॉर्म अप्रैल में ही भरे तो बेहतर है। और चूंकि आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो फॉर्म 15H आपको करना होगा। फॉर्म 15G जो है वो 60 साल के नीचे वालों के लिए है। तो आप अगर 60 साल की उम्र ज्यादा हो चुकी है तो फॉर्म 15H अप्रैल में भरे। उसका फायदा क्या होता है कि आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट में जब कभी भी इंटरेस्ट आपके खाते में डाला जाता है उसी समय टीडीएस कटता है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं दे रखा है तो जाहिर सी बात है ऊंचे दर पर टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा, और बाद में आप जब रिफंड के लिए आवेदन करेंगे तब बात अलग है। तो बेहतर है कि जितनी जल्दी फॉर्म आप दाखिल कर दे बैंक में, आपके लिए उतना ही बेहतर स्थिति रहेगा।
आइए चलें महाराष्ट्र। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमन। अमन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
हेलो
जी, जुड़ चुके आप।
हेलो मैडम। हेलो सर।
हाँ जी अमन जी, सवाल पूछिए अमन जी। जी 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 जी
मैडम, ये मैं 100% ब्लाइंड हूँ और एक टैक्स पे ही हूँ।
जी जी।
तो जैसे पहले ATU का जो प्रावधान था वो अभी नए टैक्स रिजिम में है कि खत्म हो गया है?
सेक्शन ATU, देखिए नए कर व्यवस्था में काफी सारी जो रियायतें हैं वो खत्म की गई हैं। आप तब तक दूसरे खबर को लीजिए, फिर मैं इसके बारे में जानकारी लेकर उनको बताता हूँ।
यस, लेट्स टेक अ लुक एट वन न्यूज आइटम व्हिच इज एक्चुअली शेकन द वर्ल्ड। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूएस टैरिफ्स। वेल, द यूएस विल इम्पोज सेपरेट टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन द नेक्स्ट 1 to 2 months। दिस वाज स्टेटेड बाय द यूएस Secretary Howard Lutnick last night. The move comes a day after the U.S. exempted electronic imports, including semiconductors, from reciprocal tariffs. Lutnick also highlighted the need to build chips and flat panel televisions in the U.S. compared to relying on imports from South Asian nations. Speaking to TV channel, the Commerce Secretary said all those products are going to come under semiconductors and they're going to have a special focus type of tariff to make sure that those products get reshored. The U.S. Commerce Secretary highlighted that smartphone and computer imports are removed from the reciprocal tariff list but will now be added to the semiconductor tariffs within the next 2 months. So, Shishirji, okay, we're joined by Rajendra before we talk on the U.S. tariffs.
Rajendra ji, हमारे साथ कुछ देर आप लाइन पर बने रहें, हमारी खबरों को सुने, उसके बाद हम आपसे आपकी फोन कॉल को लेंगे. भारत के दवा निर्माण और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 11,828 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ. इसके अलावा 2024-25 के दौरान 7,246 करोड़ रुपए से अधिक के 13 विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इससे कुल विदेशी निवेश 19,134 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. घरेलू स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात में वृद्धि के मामले में सरकार की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम उपयोगी सिद्ध हुई है. इस स्कीम के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावित लक्ष्य से कहीं अधिक हो चुका है. इसके तहत आरंभ में 3,938 करोड़ 57 लाख रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जबकि दिसंबर 2024 तक ही वास्तविक रूप से 4,253 करोड़ 92 लाख रुपए निवेश हो चुके थे. हम राजेंद्र जी आपको लाइन पर लें, उससे पहले हमसे जो पहले श्रोता ने अपना सवाल रखा था उसके संबंध में शिशिर जी कुछ जवाब लेकर हाजिर.
रमेश जी का जो प्रश्न था कि सेक्शन 80U जिसमें 75,000 से 1,25,000 तक का जो बेनिफिट मिलता है विकलांगता के या
दिव्यांगता के कारण,
अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तभी उनको मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में उनको इस सेक्शन का फायदा नहीं मिलेगा.
आशा है कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको उपयोगी सूचना मिली है. बहरहाल दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजेंद्र जी. राजेंद्र जी बहुत बहुत धैर्य आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सवाल पूछें
जी. Hello. सवाल पूछिए राजेंद्र जी. जी
सीनियर सिटीजन के लिए FY 25-26 में फिक्स रेट पे इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो TDS के लिए 1,000-1,00,000 कर दी गई है, क्या मैं ठीक हूँ? नंबर एक. नंबर दो, अगर ये 1,00,000 है तो 1,00,000 से कम इंटरेस्ट पे फॉर्म 15H भरने की जरूरत है?
देखिए 1,00,000 बिल्कुल आप सही हैं और 1 रुपया भी अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है बेहतर है कि आप उसको जो है वो फॉर्म 15H दाखिल कर दें. आप अपने लिए एक तरीके से कहते हैं ना सेफ्टी है. 1,00,000 रुपये कहता है कि TDS नहीं कटेगा. TDS नहीं कटना और रिफंड के लिए या रिटर्न दाखिल करना दो अलग अलग चीजें होती है. तो इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आप फॉर्म दाखिल करने में कोई कमी ना करें, भले ही आपको 1 रुपया भी टैक्स ना देना पड़े.
All right, let's move on to oil now. Oil prices rose over 1% today following U.S. exclusions on smartphones, computers and some other electronics, and Chinese data showing a sharp rebound in crude imports in March. Brent crude was trading over 1.2% up at $65.57 per barrel. WTI crude was trading over 1.3% up at $62.33 per barrel when reports last came in. China's crude oil imports in March rose from the previous 2 months, boosted by a surge in Iranian oil and a rebound in Russian oil deliveries. China imported a total of 51.41 million metric tons of crude oil in March, according to the data from the Chinese General Administration of Customs.
श्रोताओं, आप अभी भी हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं फोन लाइन से जुड़ने का, लेकिन अब जितना समय बचा है उसमें हम आपके सवाल को नहीं ले सकते, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और लिए चल रहे हैं आपको सर्राफा बाजार. सर्राफा बाजार में सोना आज बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 94,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 94,680 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी. एमसीएक्स की ओर चलें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.64% घाटे के साथ 93,148 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.68% बढ़त के साथ 94,926 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रहा था. बहुत संक्षेप में शिशिर जी समझना चाहेंगे, सोना चांदी दोनों के भाव ने कहने लगातार बढ़े हैं और अच्छा रिटर्न इसने दिया है, आने वाले दिनों में क्या आसार लग रहा है? बहुत संक्षेप में जवाब.
दाम थोड़े बढ़ेंगे.
यानी सोना चांदी की चमक तेज होने वाली है, ये हमारी सलाह है, यानी निवेश के लिए अभी भी
मैं कहूंगा हो सकते हैं,
यानी हो सकते हैं, आपको मुनाफे के आसार निकल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। बस इसी नोट पर हम आपको श्रोताओं की ओर से शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
जी धन्यवाद।
एनीवे ऑलवेज गुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो सेज मार्केट मंत्रा। राइट, बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फ्रेंड्स, वी बिगिन विद द फर्स्ट हेडलाइन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा टू मार्क Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar's birth anniversary, highlights Dr. Ambedkar's ideals as foundation of governance. Domestic stock markets remain closed on account of Ambedkar Jayanti. Major Asian indices register gains. European markets trade in positive territory. And crude oil prices rise over 1%. Brent crude trades at $65.57 per barrel. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Patak, signing off. Namaskar.